मेरे प्रिय मित्रों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के तहत मैं कुछ भारत के बारे में जो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं उनके बारे में कुछ बातें करूंगा, लेकिन आइए पहले कुछ दूसरी बातें कर लेते हैं। अखबारों में आपने पढ़ा, न्यूज में भी इस बीच में आपने सुना, चैनल्स पर आपने देखा कि हमारे देश के महान धावक मिल्खा सिंह जी नहीं रहे, उनका निधन हो गया। दोस्तों, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी अपने प्रिय श्रोताओं की ओर से, एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से, मैडम प्रीति अग्रवाल की ओर से और अपनी ओर से उन्हें बहुत बहुत हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, हार्दिक श्रद्धांजलि। दोस्तों, सिर्फ इसलिए ही नहीं कि वो हमारे देश के महान धावक थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने हमें एशिया में गोल्ड मेडल दिलाया, एशियाई चैंपियनशिप में, कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल दिलाया, बल्कि उससे भी कहीं अधिक इस रूप में कि वो बहुत लंबे समय तक हिंदुस्तान के हम युवाओं के लिए एक मशाल के तौर पर रहे हैं, मशाल के तौर पर, एक जलती हुई मशाल। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब हम लोग युवा थे और अपनी जिंदगी के जद्दोजहद में लगे हुए थे, बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, निराश हो जाते थे, हताश हो जाते थे, हर कोई होता है, परेशान हो जाते थे, छोड़ने का मन करने लगता है, उस समय कहीं ना कहीं से मिल्खा सिंह दौड़ करके हम लोगों तक पहुंच जाते थे, दौड़ करके पहुंच जाते थे। उनकी जीवनियां उस समय हम लोगों को रटी हुई थी। उस समय मैगजीन्स बहुत निकलती थी, अब तो खैर मैगजीन्स नहीं आती, उस समय मैगजीन्स बहुत निकलती थी और उनमें इस तरह की जीवनियां प्रकाशित होती रहती थी। मिल्खा सिंह दौड़कर पहुंच जाते थे और सबसे बड़ी बात यह है कि आने के बाद वो हम जैसों का हाथ पकड़ करके, जो बिल्कुल लेटे हुए हैं, सुस्त बैठे हुए हैं, उनका हाथ पकड़ करके दौड़ने लगते थे, उन्हें दौड़ाने लगते थे, और एक बार जब वो दौड़ा देते थे तो फिर हम सब दौड़ने लगते थे। मतलब अपने युग के आइकॉन रहे हैं, ऊर्जा के स्रोत रहे हैं मिल्खा सिंह। आप जानते हैं कि इन पर फिर एक फिल्म भी बनी। दोस्तों, मिल्खा सिंह जी की जीवनी पर एक फिल्म बनी है। मैं चाहूंगा कि आप सब इस जीवनी को देखें, हो सकता है आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखी भी हो, लेकिन फिल्म की तरह मत देखिए, उसको जीवनी की तरह देखिए, उसको एक ऊर्जा के स्रोत की तरह देखिए, उसे एक ऐसे लाइट हाउस की तरह देखिए कि जब आप अंधेरे में भटक रहे होते हैं या अंधेरे में बैठ ही चुके होते हैं, कुछ भी कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, कुछ सूझता नहीं है, उस समय किस तरीके से यह लाइट हाउस आपको न केवल रोशनी ही दिखाता है बल्कि जिंदगी की दिशा भी बताता है, उधर जाओ, रास्ता उधर है, रास्ते कभी भी बंद नहीं होते। मिल्खा सिंह एक बिल्कुल जीवंत प्रेरणा स्रोत। लेकिन 91 ईयर्स वो हमारे बीच में रहे, हम लोगों का सौभाग्य है। फिर भी ऐसे व्यक्तित्व का जाना मन में सूनापन तो दोस्तों पैदा कर ही देता है, और वो सूनापन खासकर हम जैसे लोग जिन्होंने हम लोगों के अंदर को लगातार हरा भरा बनाया, हमेशा उसे गुलजार रखा, वहां से अगर वो शख्स चला जाए तो शायद वह सूनापन हम जैसे लोग शायद कुछ ज्यादा ही महसूस कर रहे होंगे। वैसे तो कुछ भी नहीं लगते थे, न रिश्तेदारी थी, न हमारे शहर के थे, न हमारे राज्य के थे, लेकिन वो राष्ट्र के होने के बावजूद पूरी दुनिया के कुछ इस तरीके से हो गए थे कि जो भी मिल्खा सिंह को जानते हैं वो आज उनके अभाव को महसूस कर रहे हैं, और जाने अनजाने ही सबकी आंखें नम हो रही हैं, और मुझे लगता है कि उनमें से आप भी एक प्रिय व्यक्ति जरूर होंगे। दोस्तों, मिल्खा सिंह जी की श्रद्धांजलि के बाद अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा उस प्रश्न के बारे में जो शुक्रवार को मैंने आप लोगों को दिया था और उसे आप लोगों ने सॉल्व करके अपने अपने ढंग से उसके प्रोसेस को मुझे बताया है। मेरे लिए बहुत आश्चर्य की बात थी, मैं इस बात को स्वीकार करता हूं अपनी कमी को, कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस प्रश्न के सोल्यूशन के रूप में आप सब इतने खूबसूरत आंसर दे सकेंगे। देखिए, आंसर देना एक अलग बात है, सही आंसर देना भी एक अलग बात है, लेकिन सही आंसर और वो भी इतने खूबसूरत तरीके से, इतनी सटीकता के साथ, वो बिल्कुल अलग बात है। कुछ आंसर तो मुझे ऐसे मिले जो इतने सटीक थे कि उनको पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर मुझे लिखना होता तो क्या सच में मैं इस आंसर को इतनी सटीकता के साथ लिख पाता। और सच पूछिए तो ऐसे स्टूडेंट के सामने मैं अपने को द्वितीय श्रेणी का महसूस कर रहा हूं और यही वह बात है जो मुझे प्रथम श्रेणी से भी ऊपर पहुंचा रही है। अपने स्टूडेंट से हारना यही हम सबकी जीत होती है। एक गुरु की जीत, एक टीचर की जीत तभी होती है जब वो अपने स्टूडेंट से हारता है। एक दो आंसर मुझे ऐसे मिले। दोस्तों, ये आंसर कैसे आए डेफिनेटली मुझे नहीं मालूम। आपकी तैयारी कैसी चल रही है, कहां कहां से आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तैयारी कहीं से भी करें, आंसर ऐसे होने चाहिए और आपकी कैपेसिटी भी इस तरह की होनी चाहिए जो कैपेसिटी आप लोगों ने दिखाई है। नो डाउट कि कुछ आंसर ऐसे भी रहे जो गलत थे, उनकी प्रश्न आप यूं कह लीजिए कि उतनी समझ में नहीं आया, और अगर प्रश्न समझ में नहीं आया तो कहां से वो उत्तर निकालें, उनको वो रास्ता दिखाई नहीं दिया, वो बात अलग है। और ये सब चीजें तो देखिए होती रहेंगी, हम 100% परफेक्शन की उम्मीद तो सबसे नहीं कर सकते, लेकिन अगर कुछ लोग भी वो परफेक्शन दिखा रहे हैं तो हम जैसे लोगों का उत्साह बढ़ता है। अब देखिए कि इसका जो आपने आंसर ढूंढा है उसके लिए मैंने आपको बस एक छोटा सा क्लू दिया था। हो सकता है कि मैंने क्लू नहीं दिया होता तब भी आप आंसर ढूंढ लेते, मुझे नहीं मालूम, लेकिन फिर भी मेरा पर्पस तो यह है कि आप जो अलग अलग डाइमेंशंस हो सकते हैं सही उत्तर तक पहुंचने के, मैं उन डाइमेंशंस को आपके सामने रखूं। और उसके तहत मैंने एक डायमेंशन आपको दिया था कि पिछले कुछ समय से, जिसमें यहां सब पीरियड को अगर हम देखें तो 10 साल की बात कही गई है, 5 साल की बात कही गई है, तो इस पीरियड में इन देशों के साथ जिनका उल्लेख यहां है, जिसमें यहां श्रीलंका है, यहां बांग्लादेश है और यहां नेपाल है, हमारे रिलेशन किस तरीके के रहे हैं। और देखिए, जब मैं कह रहा हूं कि हमारे रिलेशन किस तरीके के रहे हैं तो ये बहुत सिंपल बात नहीं है, इसलिए क्योंकि इन रिलेशन के केंद्र में चीन है, चाइना है, और चाइना के साथ हमारे संबंध कैसे चल रहे हैं ये बहुत वेल नोन है। और आप जब अखबार पढ़ते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते हैं, एडिटोरियल कमेंट्स पढ़ते हैं तो लगातार आपको पढ़ने को मिलता है कि कैसे चीन इस पूरे के पूरे एरिया में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, बांग्लादेश से कैसे जुड़ रहा है, चीन अब नेपाल के साथ कैसे कर रहा है, श्रीलंका के साथ, सब आप पढ़ते रहते, कई कई बार पढ़ते हैं। क्वाड की चर्चा हम लोगों ने डेली ऑडियो लेक्चर में कितनी बार की है, और ये जो क्वाड है हिंद प्रशांत क्षेत्र में उसके जो मंसूबे हैं उसको कंट्रोल करने का एक उपाय जैसा है, ढेर सारी बातें हो रही हैं। तो अगर आप डेली ऑडियो लेक्चर भी पिछले 6 महीने से सुन रहे हों तो आपके लिए इस प्रश्न को हल कर पाना बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है। और दोस्तों, यही सिविल सर्विस की चुनौती है, अगर चुनौती आप कहें तो, मैं इसे चुनौती नहीं मानता, मैं इसे खूबसूरती मानता हूं कि यही सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की खूबसूरती है। दोस्तों, वो खूबसूरती आप लोगों की पकड़ में आ रही है, मेरे लिए इससे अधिक आत्मसंतोष की बात क्या हो सकती है। आप लोगों ने उत्तर दिया, सच में पूछिए तो इसके लिए मैं बहुत भूरी भूरी आप सबकी प्रशंसा करता हूं। दोस्तों, अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर, और उसके तहत मैं आपको कुछ तथ्य बताना चाह रहा हूं। और इनफैक्ट ये जो तथ्य है, आपको ध्यान होगा अगर आप पिछले क्लिपिंग्स को देखें तो शनिवार को जो आपको प्रेस क्लिपिंग्स प्रोवाइड की गई हैं उसमें बिजनेस स्टैंडर्ड का एक क्लिपिंग है, सन 1991 के बाद के 3 दशक, क्या आपको ध्यान आ रहा है? और चलिए, अगर आपको ध्यान आ रहा हो, हमें लगातार अपना मूल्यांकन करते रहना चाहिए, क्या आपने इसे पढ़ा? और अगर आपने इसे नहीं पढ़ा तो फिर आप सोचिए कि आपने इसे क्यों छोड़ा। मतलब कोई ना कोई बात तो आपके दिमाग में आई होगी ना कि नहीं, मेरे काम की नहीं है, बेकार है, कोई फायदा नहीं है, छोड़ो, या समय नहीं है, या बाद में देख लेंगे, जो भी कारण हो। लेकिन अगर आपने छोड़ा तो क्यों छोड़ा, ये आपको सोचना चाहिए। दूसरी बात कि यदि आपने पढ़ा तो इसे किस तरीके से पढ़ा, पढ़ करके छोड़ दिया, या कि पढ़ करके कुछ तथ्य दिमाग में रख लिए, या पढ़ने के बाद आपको ये आर्टिकल बिल्कुल बेकार जैसा लगा, सरसरी निगाह डाल करके आपने किनारे कर दिया, या फिर आपको लगा कि नहीं, इसमें तो कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, इन्हें नोट कर लेना चाहिए, ये बातें मेरे बहुत काम आएंगी आगे चल करके, और खासकर मुख्य परीक्षा में। अब आप देखिए कि इनमें से आपने क्या किया, क्योंकि इसी से इस बात का निर्धारण होता है कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन आपके साथ क्या करेगी। यूपीएससी की जो रिक्वायरमेंट है, आप उस रिक्वायरमेंट को पूरा करने की समझ अपने अंदर विकसित कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं। अभी मैंने जो आपको तरीका बताया उस तरीके से आप इस बात को समझ पाएंगे, पकड़ पाएंगे। और याद रखिए कि यहां आपकी च्वाइस नहीं है, यहां च्वाइस बिल्कुल नहीं है कि नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं। यहां च्वाइस इस बात की है कि जो करना है वो करना है। और ये इतना खूबसूरत एडिटोरियल कमेंट है, इतना खूबसूरत है कि इसमें जो तथ्य बताए गए हैं ये तथ्य आपके इंटरव्यू में तो काम आएंगे जो अभी होने वाले हैं, मेंस में काम आएंगे जो आगे चल करके होने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप मेंस तक पहुंचे, और केवल इसी साल काम नहीं आएंगे, आगे भी कई सालों तक ये काम आते रहेंगे। अगर आप दूसरे स्टेट सिविल सर्विस में बैठ रहे हैं तो शायद वहां भी काम आ जाए, और कोई आश्चर्य नहीं कि निबंध में भी आप इनका उपयोग कर सकें। आपको नहीं लगता कि ये तुरुप का पत्ता जैसा है जिसका इस्तेमाल हम जीत के लिए करते हैं? दोस्तों, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए हुए हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसे एक बार फिर से देखें। अगर आपने नहीं देखा है या वो काम नहीं किया है जो मैं आपसे अपेक्षा कर रहा हूं, तो आप इस एडिटोरियल कमेंट को फिर से निकालें और इसमें से उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करें जिन्हें आप अपने लिए जरूरी समझते हैं। नोट करें, मैं अभी आपको वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं बता रहा हूं, या फैक्ट कह लीजिए, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं बता रहा हूं। बहुत संभव है कि मैं कल परसों या पूरे सप्ताह में, अब घटनाओं के ऊपर डिपेंड करेगा, मैं फिर आपको फैक्ट्स बताऊं कि इसमें से कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स थे जो आपको नोट करने चाहिए थे। इससे भी आपको अपना मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। दोस्तों, मैंने अब थोड़ा सा सोचा है, आप लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया है कि मैं थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ें भी आप लोगों के सामने रखूंगा ताकि आप थोड़े से एक्टिव होकर के तैयारी कर सकें। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में आज बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ, और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं। नीरज वर्मा बाराबंकी उत्तर प्रदेश से, हिरिकेश कुमार कोडरमा झारखंड से, प्रणव राज सत्यम, विजेता कुमारी वर्मा बोकारो झारखंड से, और सौम्या रंजन मिश्रा, आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूं। नमस्कार।